ti, om ti, om shanti. अभी पिछले अव्यक्त मिलन में जो बाबा की मुरली चली, आप सभी को याद होगा बाबा ने किस विषय पर मुरली चलाई, पवित्रता की महानता क्या है। और उसके पहले भी थी, उसमें भी बाबा ने पवित्रता को बहुत सूक्ष्म था कि पूज्य बनने का आधार पवित्रता है और जो देवी देवताओं की पूजा होती है उसमें अंतर क्यों आता, तो वो पवित्रता की स्थिति के अनुसार सब नंबरवार पूज्य बनते हैं। तो शिव बाबा तो है ही पवित्रों को पावन बनाने का अवतरण हुआ है, अभी दुनिया की स्थापना करने के लिए ही शिव बाबा आए हैं। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन आधार पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता या अलगता है वो पवित्रता है, ब्राह्मण का ये श्रृंगार है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन सब समझ, संपूर्ण पवित्र हम कहते हैं तो केवल काम विकार पर विजय पाना उसको पवित्रता नहीं रहेंगे, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी बनना। इसकी बहुत सूक्ष्मता और भी बताई है, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प बोल कर्म किए वैसे ही संकल्प बोल कर्म हमारे हों, जिसको हम दूसरे शब्दों में फॉलो फादर कहते हैं। या शिवाचार्य यानी एक होता है ब्रह्मचारी बनना, या शिव बाबा के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने, उसे पवित्र आत्मा या श्रेष्ठ आत्मा कहेंगे। पवित्रता की सूक्ष्मता में बा कहते हैं पूर्ण निर्विकारी में भी केवल विकारों का मोटा रूप नहीं, लेकिन उनके जो अंश वंश हैं, अंश वंश भी विजय पाना, उनके बाल बच्चे चारों बच्चे हैं। फिर उसके भी आगे बाबा कहते हैं स्वप्न में सभी मम्मी बाबा ने समझाया कि स्वप्न में भी अगर किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या आवेश के वश कर्म होता है, या स्वप्न में भी शरीर का उल्लंघन, या स्वप्न आत्मा के प्रति क्रोध के वशीभूत कोई शब्द निकल जाते हैं, तो भी वो पवित्रता खंडन माना जाएगा। और उसके भी आगे बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प और किसी भी कारण से हमें दुख और अशांति का अनुभव होता है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्र मन है इसका मतलब सदा सुख शांति स्वरूप होंगे, लेकिन अगर हमें कहीं दुख अशांति का अनुभव अपने संकल्पों की वजह से हो रहा है, क्योंकि अशांति का सीधा संबंध हमारे मन के विचारों से है, तो अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, हमारे विचार हैं, तो वो भी अपवित्रता है। पवित्रता माना सदा समर्थ संकल्प, सदा शुभ संकल्प, सदा श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में चले। तो अब हम समझ सकते हैं, हमारी पवित्रता चेकिंग कर सकते हैं। तो जहां तक हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो दुनिया में लोग इसको असंभव समझ रहे हैं, आज की कलयुगी दुनिया में इसे भी असंभव हैं, और खासकर इसी सन्यासी हैं वो घर बार छोड़ करके चले जाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। पर बाबा हमें क्या कहते हैं, आप असंभव को भी संभव करने वाले हो, और किया है बाकी बच्चों ने, आज लाखों बच्चे हैं बाबा के घर गृहस्थ में रहते हुए आग और कपास साथ में रहें, ये अनुभव ले साथ में रहते हुए भी ब्रह्म पालन करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत सहज है। सहज है ऐसा ही कहेंगे, मुश्किल है, सहज है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें जो विधि दी, जो स्मृति दिलाई के आधार पर ये सिद्धि हमें सहज प्राप्त हो गई। तो विधि क्या दी बाबा ने, हमें सत्य स्वरूप का ज्ञान दिया कि मैं आत्मा पवित्र, परम धाम में मैं आत्मा पवित्र हूँ संपन्न। और हम देवी देवताओं के रूप में आदि स्वरूप में आते हैं, हम पवित्र देवात्मा हैं और एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म पवित्र हैं। तो उस स्मृति से समर्थ आ गई, शक्ति आ गई कि इतने जन्म पर कल्प तो हमारे एक अंतिम जन्म। अभी दो दिन पहले साकार मूली थी बाबा ने का सबसे सस्ता सौदा, बाबा इस अंतिम जन्म में आप एक जन्म पवित्र रहे हो, 21 जन्म आप मालिक बन जाते हो, याद है ना। दो दिन पहले किसी को बहुत ऊंच पद की प्राप्ति होती है, IAS बनते हैं, हम देखते हैं IPS बनते हैं, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ी है लेकिन क्योंकि मालूम है कि भविष्य बहुत श्रेष्ठ होगा तो वो मेहनत करना अखरता नहीं है। तो यहाँ भी बाबा ने यही कहा कि इस अंतिम एक जन्म में जो इतने जन्मों की प्राप्ति हो रही है तो उसके लिए क्या हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। हमने हिम्मत रखी, बाबा की मदद मिली और हमारे लिए पवित्रता को अपनाना इस कलयुगी दुनिया में भी सहज हो गया जब चारों ओर इतना तमोगुणी वातावरण है। तो हम देखते हैं दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन वो परमात्मा विधि से नहीं है, वो अपनी विधियां अपनाते हैं। जो भी भक्ति मार्ग के हैं, चाहे वो सन्यासी हैं या जो दुनिया में भी रहने वाले हैं, लौकिक दुनिया में भी रहने वाले हैं, आज अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं समझो नरेंद्र मोदी, हाँ भले शादीशुदा हैं लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन जीते हैं, जैसे राहुल गांधी है या हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, वो भी ऐसे कुमार थे, ऐसे और भी कई मिनिस्टर हैं, अभी सबके नाम लेने जाएंगे तो आज के समय में भी वो लंबी लिस्ट है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि क्योंकि परमात्मा विधि से वो पवित्रता को नहीं अपनाए हुए हैं और उनकी वो पवित्रता का स्तर वैसा नहीं है जो बाबा हमें कहते हैं, तो इस कारण उनकी सिर्फ एक जन्म की प्राप्ति है, अल्पकाल की प्राप्ति है। ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्ति होती है लेकिन जो जन्म जन्मांतर हम बच्चों को प्राप्ति होती है और पूरे कल्प के लिए ही मिल जाती है, 21 जन्म की तो गारंटी है लेकिन हम जो रॉयल आत्माएं हैं, बाबा प्यूरिटी की जो रॉयल्टी कहता है वो हमारी पूरा कल्प चलती है, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं। और ये जो पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी का गायन पूजन जैसे देवी देवताओं के रूप में भी फिर होता है, तो वो विधि अपनाएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने हरेक को, हरेक स्त्री को माँ के रूप में देखा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को भी माँ का दर्जा दिया, शारदा माँ कहा। हम महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं, उनकी आत्मकथा किसी ने पढ़ी होगी, तो उन्होंने भी ब्रह्मचर्य को अपनाया। जब भारत की आजादी के लिए उन्हें काम करना था तो उन्होंने उसके महत्व को समझा और घर गृहस्थ में रहते हुए भक्ति मार्ग में थे महात्मा गांधी, भक्ति मार्ग में होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन उन्होंने वो जो वर्णन किया है, क्योंकि हमने पढ़ी है उसकी, उनकी आत्मकथा, तो उन्होंने कहा कि मुझे काफी मुश्किल हुआ, मुझे इतना आसान नहीं लगा लेकिन क्योंकि मुझे इसका महत्व पता था इसलिए हर कीमत पर चाहे कितनी भी मुश्किल आई मुझे लेकिन मैंने उसका, उस व्रत का पालन किया। और हम देखते हैं कि उनके परिणाम की वो कितने दृढ़ थे अपने हर मूल्य के ऊपर, खासकर सत्यता का भी जो मूल्य था उसकी भी दृढ़ता कितनी थी उनकी, उसके आधार पर उन्हें सत्याग्रह आंदोलन किया और अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया। लेकिन वही है कि जो दुनिया वाले करते हैं उससे हमारी विधि बिल्कुल न्यारी है, जैसे हम कहते हैं परमात्मा की गतमत न्यारी है, वो जानते ही नहीं आत्मा का ज्ञान। वो ये समझते ही नहीं कि हम आत्मा रूप में आपस में सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। परम धाम में जो हमारा संबंध है वो ये संबंध है कि आत्मा स्त्री पुरुष है ही नहीं, है ना, आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं है। और दूसरा कि जब हम साकार में हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में हम भाई बहन हैं। तो कई बार ये भी ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करते हैं कि यहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई बहन बना देंगे, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा करके कोई भाई बहन बना देगा। पर हमें मालूम है कि परमात्मा के संबंध से, उस नाते से, जब हम शरीर में हैं तो हम हैं ही भाई बहन। जैसे हम कहते हैं कि मंदिर में जाकर आरती करते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो दोनों के ही मात पिता है ना भगवान, तो पति पत्नी दोनों का ही मात पिता है, तो दोनों उनके सामने क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो वो संबंध जो ईश्वर के साथ हमारा है, जब वो हमें समझ में आ गया तो हमारे लिए ये बहुत सहज हो गया। और बाबा हमें कहते हैं हमेशा आत्मिक दृष्टि रखो एक दूसरे के प्रति, आत्मिक दृष्टि से ही संबंध में आना है, देह पर दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए। अगर देह पर दृष्टि गई तो बाबा उसको कहते हैं देह पर दृष्टि जाना माना सांप को टच करना, और सांप को टच करेंगे तो सांप काटता है और सांप में विष होता है। तो इसीलिए जब दैहिक दृष्टि है ही नहीं तो दैहिक आकर्षण की भी बात नहीं रहती, और अगर हम देह देखते हैं तो ही फिर हमें उसका व्यक्तित्व नजर आएगा, हमें उसके फीचर्स नजर आएंगे, हमें उसके कपड़े दिखाई देंगे, हमें उसके कलर, उसका रंग दिखाई देगा कि ये काला है, ये गोरा है, या स्त्री है पुरुष है, उस आधार पर। तो जब देह पर नजर जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा झुकाव या आकर्षण होता है। तो ये हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। बाबा कई बार कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन तो हम करते हैं, कर्म में हम करते हैं, लेकिन मनसा में भी हमारी क्रिमिनल आई ना हो, यानी दृष्टि वृत्ति हमारी चंचल ना हो, किसी पर हमारी दृष्टि भी न जाए, माना गलत दृष्टि भी न जाए, जिसको बाबा सिविल आई या क्रिमिनल आई इस तरह से कहता है। तो अगर हमारी कभी भी ऐसी दृष्टि हो जाती है तो बाबा उसमें कहते हैं कि अपने को ही दोषी समझना है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना है कि ये वातावरण ऐसा था ना, ये इन्होंने जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे ना, या इन्होंने इस तरह का फैशन किया हुआ था, या जो भी, मतलब क्योंकि इस तरह से उन्होंने व्यवहार किया या माहौल ही ऐसा था, तो हम दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन उनका दोष नहीं। ये तो सब हमें मिलना ही है कलयुग की दुनिया में, आप समाज में रहते हैं, जरूर सब उत्सवों में भी जाना पड़ेगा, शादी ब्याह में भी जाना पड़ेगा, और ऐसे स्थानों पर भी हम जाते हैं जहाँ बिल्कुल ही तमो प्रधान तमो गुणी वातावरण होता है, लोग बिल्कुल इस तरह से ही मतलब हमें दृश्य दिखाई देते हैं, तो उनको हम दोष देंगे तो फिर कहीं ना कहीं उस अपवित्रता का असर हमारे ऊपर आ जाएगा। और यदि हमारे ऊपर उस अपवित्रता का असर आया, हमारी दृष्टि वृत्ति प्रभावित हुई, बाबा कहते हैं ना सबसे ज्यादा कर्मेंद्रियों में धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है, कौन सी, आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। तो चलो ये तो बाहर जाने की बात है, हम घर में भी बैठे होते हैं और टेलीविजन सभी घरों में है आज, टेलीविजन छोड़ो हर एक के हाथ में मोबाइल है, उसमें ही सारी दुनिया है, आप जो चाहे देख लो, आज मोबाइल में टीवी भी है तो मोबाइल में सब कुछ आप देख सकते हैं। तो अगर हमने इन आंखों को सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, यानी बाबा की श्रीमत प्रमाण जो हमें देखना चाहिए वही हम देखें, बाबा साधनों का प्रयोग करने के लिए हमें मना नहीं करते हैं, लेकिन अब वो हमारी स्वोन्नति में सहायक हो, यानी हमारी साधना को वो मजबूत करे। अगर हमने मुरली सुनी, अगर हमने क्लास सुनी, या जो भी हमने बाबा से संबंधित जो भी कार्यक्रम है वो देखे, यहाँ भी अपना पीस ऑफ माइंड टीवी चलता है, वो भी चलता है, मोबाइल में भी चलता है, वो हम देखते हैं, वो हमारी स्वोन्नति में सहायक है। लेकिन उसकी बजाय अगर हमारा चैनल ही बदल गया है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर आता है। और ऐसा होता है तो बाबा इसको कहता है ये महा महा पाप है ब्राह्मण आत्मा के लिए। अगर हम ये कहते हैं तो फिर इसका मतलब हम नामधारी ब्राह्मण हुए, हम सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। तो ऐसी चीजों को पहली बात तो हमें अवॉइड करना है, हमें बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करना ही नहीं है। सिनेमा को बाबा सिंह की माँ कहते हैं, जैसे सिनेमा देखने का कईयों को शौक होता है तो बाबा यही कहता है, बाबा अपनी अपना अनुभव सुनाते ना ब्रह्मा बाबा, कि बाबा को बचपन से बहुत वैराग्य था, लेकिन सिर्फ एक ही बार बाबा ने सिनेमा देखा, शायद सौभाग्य लक्ष्मी नाम था उस फिल्म का, और उसके बाद बाबा को शादी का ख्याल आया और फिर बाबा ने गृहस्थ में प्रवेश किया। तो चलो आज का जो समय है, क्योंकि ये चीजें इतनी कॉमन है, इतना जल्दी प्रभाव नहीं आता हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में वो विचार चल सकते हैं, चलने की संभावना है अगर हम देखते सुनते हैं तो। हमारी आंखों पर हमारा पूरा अधिकार हो, जो देखना है वही देखना है, जो नहीं देखना है चाहे जो भी परिस्थिति हो। आपको मानो आप बच्चों के साथ रहते हैं, एक ही कमरा है, एक ही ड्राइंग रूम है, अब बच्चों को तो देखना ही है, हम भी बैठे हैं तो मुझे देखते हुए भी नहीं देखना है, हम अपना ध्यान कहीं और लगा सकते हैं, हम कुछ पढ़ सकते हैं, भले चलता रहे ना वो। अगर हमने मुरली पढ़ना शुरू कर दिया, हम अव्यक्त वाणी पढ़ रहे हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा, वो पढ़ने में चला जाएगा। तो ये बाबा कहते हैं जब तक खुद को खुद सावधान नहीं रखेंगे तब तक कहीं ना कहीं फिर हमसे इस प्रकार की गलतियां होती रहेंगी। और विकार में जाने को तो बाबा कहते हैं कि ये तो महाविक्रम है। कई मूल्यों में बहुत कड़े शब्द बाबा ने बोले हैं, अब साकार मूल्यों में तो प्राय आता ही रहता है कि ये पांचवीं मंजिल से गिरने के समान है। और वो विक्रम जो है वो आपके आज तक के जो भी पुण्य कर्म आपने किए हैं वो सारे पुण्य कर्म की पूंजी को समाप्त कर देता है। अगर एक बार आपने वो विक्रम कर लिया तो फिर, और बाबा ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो कहते हैं मानो किसी ब्राह्मण आत्मा पर ऐसी दृष्टि जाती है तो वो कुल अंकित है। बाबा ने काम विकार का सूक्ष्म रूप क्या बताते हैं, सूक्ष्म रूप बताते हैं लगाव झुकाव प्रभाव ना, ऐसे हम नियम में चल रहे हैं कर्म के अनुसार, लेकिन अब हर आत्मा में कोई ना कोई गुण विशेषता तो है ही है। और जिन भी हम आत्माओं के संपर्क में आते हैं, किसी का व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है, किसी का बोलचाल बहुत मीठा है, बहुत स्नेह से व्यवहार करते हैं, या उनसे हमें समय पर सहयोग मिलता है हमेशा, या उनकी सेवा हमें अच्छी लगती है, कोई बहुत अच्छे ज्ञानी योगी भी होते हैं इस तरह से, या उनका पालना देने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, उनसे बहुत अपनापन मिलता है हमें ना, जैसे हम उनसे बहुत समीप अनुभव करते हैं, तो ये चीजें क्या होती हैं, पहले प्रभावित करती हैं, और प्रभावित हुए माना फिर धीरे धीरे झुकाव हो जाता है हमारा उसके प्रति, फिर हम कहेंगे ये हमें अच्छा लगता है। बाबा दोनों के लिए कहते हैं, व्यक्ति अच्छा लगता है और वस्तु भी अच्छी लगती है। अच्छा लगना माना फिर धीरे धीरे वो इच्छा का रूप ले लेता है कि नहीं यही अच्छा है, यही होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। और फिर जब यही शब्द आ जाता है ना, सेवा में यही साथी चाहिए, या इसी से ही मुझे ज्ञान सुनना है, इसी से ही मुझे योग करना है, जो भी मतलब अगर हम वो निश्चित करने लग जाते हैं कि यही चाहिए, तो बाबा कहता है कि वही दाल में काला है। तो इसको भी बाबा कहते हैं कि ये भी अपनी चेकिंग करो। और उसकी निशानी क्या है, अगर वो लगाव का रूप होने लगता है, पहले प्रभाव, फिर झुकाव और फिर वो लगाव, फिर उनसे बात करना अच्छा लगेगा, उनसे बैठना अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्यादा बात करेंगे औरों की तुलना में, अच्छा लगना माना क्या है ना। और फिर बाबा कहता है ये बातों का जो झुकाव है ये भी काम विकार का अंश है। और अगर कोई भी प्रकार की कामना है आत्मा से, कामना माना हद की हमारी छोटी छोटी कामनाएं होती हैं, हमारे स्वार्थ होते हैं, तो बाबा कहता है कि ये कामना भी काम विकार का अंश है। चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे वो सेवा के संबंध में हो, कई बार सेवा के संबंध में भी होती है हमारी हद की कामनाएं होती हैं, अपना वो स्वार्थ हम पूरा करना चाहते हैं, उस भाव से हम करते हैं, तो बाबा उसके अंश वंश को बहुत महीन रूप से हमें समझाते हैं। और इन चीजों को, क्योंकि ये माया के रॉयल रूप है, हमें नहीं समझ में आते, हम इनको गलत समझते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कोई हमें इशारा देता है, मानो हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हम उसे गलत समझ ही नहीं रहे, फिर किसी को लगा कि नहीं ये जो आपका इनसे मिलना जुलना है ना, ये ठीक नहीं है, इसके वाइब्रेशन, लोग तो वाइब्रेशन भी पकड़ते हैं कि इनके जो वाइब्रेशन है, जैसे हम किसी की दृष्टि वृत्ति के बारे में बात करते हैं तो समझ में आती है ना कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, जब हम किसी से मिलते हैं तो वो भी समझ में आता है, तो वो वाइब्रेशन कैच होते हैं कि ये सही वाइब। और जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमें ये परखने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा हमें ज्ञान, समझ देता है बाबा हमें, तो वो परखने की शक्ति बढ़ने के कारण हमें तुरंत पता चलता है कि ये वाइब्रेशन ठीक नहीं है, है ना। तो फिर मानो किसी ने पकड़ लिए आपके वाइब्रेशन और उसने आपको इशारा दिया कि देखो आप ये जो इस तरह से जो आप व्यवहार में आ रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, आप ठीक कर लो अपना। फिर वो चाहे वो सेंटर पर हो, चाहे वो परिवार में हो, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई ना कोई किस्से यज्ञ में आते रहते हैं, तो फिर क्या करना शुरू करते हैं, कई बार नहीं मानते हैं, माना उस चीज को, जैसे कहा ना, गलत समझते ही नहीं है, और फिर उसको सिद्ध करते हैं, उसका स्पष्टीकरण देते हैं कि नहीं, मेरा भाव ऐसा नहीं है, ये तो आप गलत समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई आपको इशारा देता है, जैसे कहते हैं ना कि धुआं कब उठता है, जब कहीं आग लगी है, बिना आग लगे तो धुआं नहीं उठता है, तो इसका मतलब सूक्ष्म में, अभी वो स्थूल रूप में नहीं आया लेकिन सूक्ष्म में कहीं ना कहीं तो है, तो उसको वहीं खत्म कर दो, आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है नहीं होगा कुछ भी, लेकिन कई बार लोक संग्रह अर्थ भी हम उस चीज को खत्म कर देते हैं कि आगे के लिए वो संबंध संपर्क ही हम न बढ़ाएं। और फिर ज्यादातर ये कहा जाता है कि उनसे हमारा संबंध कैसा हो, जैसे कि हम सिर्फ काम से काम, जो मर्यादा पूर्वक हमारा संबंध है वो इसी प्रकार का होता है। बाबा नहीं कहता एक्स्ट्रा में नहीं जाना है, अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगता है, स्नेह है तो सबसे स्नेह है, ऐसे नहीं कि इससे थोड़ा स्नेह है, इससे थोड़ा ज्यादा स्नेह है, तो जहां भी एक्स्ट्रा है हमारा वो उसका अंश है। तो इन बातों को हमें कभी बढ़ाना नहीं है, अगर कहीं से भी कोई बात हमारे कान में आती है, हमारे प्रति ये कहा गया है, मानो दूसरों के द्वारा भी हमें सुनने में आता है, तो भी हमें तुरंत वहां उसको फुल स्टॉप कर देना चाहिए। अगर हम बढ़ाएंगे तो वो निश्चित रूप से, जैसे कहा ना कि बाप का नाम बदनाम करते हैं, बाबा कई बार नहीं कहते हैं, तो दो तरह से होते हैं, एक तो क्रोध करके जब हम किसी के प्रति अपशब्द बोलते हैं तो भी हम नाम बदनाम करते हैं, और दूसरा अगर काम के वशीभूत होकर के कोई कर्म होता है तो भी हम नाम बदनाम करते हैं और उसके लिए क्या कहते हैं, सद्गुरु का निंदक न पैठौर का मतलब फिर ऊंच पद की प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। बाबा कहता है कि आप अपने राज्य पद को स्वतः ही खत्म कर रहे हो। अगर हम इसको अंडरलाइन नहीं करते हैं तो राज्य पद से हम हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। और हम सब क्या बनने के लिए आए हैं, क्या बनने के लिए आए हैं, प्रजा बनने के लिए आए हैं कि राजयोगी हैं? राजयोगी हैं या प्रजा योगी हैं, क्या कहेंगे? राजयोगी है ना। हरेक क्या कहता है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो फिर वो लक्षण भी हमारे हों। तो हमारी जो पवित्रता की धारणा है वो इतनी ऊंच श्रेष्ठ है जिसे हम संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। जब वो इस स्तर तक होगा तब हमारे स्वप्न भी पवित्रता के होंगे, तब हमारे स्वप्न तक उसका प्रभाव होता है, जो हमारी दिनचर्या होती है। तो बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं, अगर दिनचर्या में भी अलबेलापन है, अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या प्रमाण हम चले, उसमें जरा भी ऊपर नीचे न हो, नहीं तो वो अलबेलापन भी अपवित्रता का अंश है। और याद है बाबा ने जो पूज्य की मुरली चलाई थी उसमें बाबा ने समझाया था कि अगर आप अमृत वेले ठीक विधि से नहीं उठते हो, कभी उठते हो कभी नहीं उठते हो, तो जो आपका पुजारी है वो भी क्या करेगा, वो कभी उठेगा और कभी नहीं उठेगा। और अगर आप अमृत वेले उठ करके बिल्कुल अलर्ट होकर के नहीं बैठते हो बाबा की याद में, तो वो पुजारी भी मजबूरी से आपकी पूजा कर लेगा। तो दिनचर्या में हर कर्म की पूजा उनकी होती है जो हर कर्म में एक्यूरेट होते हैं। देवी देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है ना, कि अब उठ रहे हैं, अब सो रहे हैं, अब भोग लग रहा है, अब श्रृंगार हो रहा है, या अब उनको सुला रहे हैं, तो वो हर कर्म की पूजा तब जब हम हर कर्म में दिनचर्या में बाबा की श्रीमद प्रमाण एक्यूरेट चलते हैं। और प्यूरिटी हमारी धारणा में इतनी अच्छी है तो फिर उसकी झलक हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देती है, जिसको हम प्यूरिटी की पर्सनालिटी कहते हैं। वो झलक किस रूप में दिखाई देती है, रूहानियत होती है चेहरे पर, और प्यूरिटी के वाइब्रेशन सबको फील होते हैं कि इन आत्माओं के पास जब हम आते हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। और जो दूसरों की नेगेटिविटी है उसका भी प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। कई बार जैसे कहा कि हम तमोगुणी वाइब्रेशंस में जाते हैं, का प्रभाव कब पड़ता है, जब हमारी पवित्रता की कमी होती है, नहीं तो हमारा प्रभाव उनकी वृत्ति को भी बदल देगा, जिसको बाबा कहता है वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन की सेवा। अंतिम समय की सेवा क्या होगी, वो यही सेवा होगी। तो जैसे हमने कहा ना कि हम दूसरों को दोषी नहीं बना सकते क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं, मुझे परिवर्तन करना है, हम प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हैं। बाबा कहते हैं जो प्रकृति को भी पावन बनाने वाली आत्माएं हैं, क्या वो मनुष्य आत्माओं को पवित्र नहीं बना सकती? तो इसकी वृत्ति का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, नहीं, मेरी शुद्ध वृत्ति उस पतित आत्मा की वृत्ति को भी बदल दे। और ये बहुत कई बार जब सेंटरों पर हम सुनते हैं कईयों के अनुभव, कई बहनें, क्योंकि सेंटरों पर बहनें ही रहती हैं, तो ऐसा सुनने में भी आता है कि क्योंकि आज की दुनिया ही पतित दुनिया। और ऐसे एक दो भाइयों ने एक बार हमें अनुभव सुनाया कि सुनते हैं कि भाई यहाँ सेंटर पे बहने हैं, तो हम लोग कोई ज्ञान सुनने नहीं आए थे सेंटर पर, वो अच्छा ज्ञान में चलते हैं अभी, बाबा के बहुत पक्के बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे अनुभव सुनाया कि मैं जब पहली बार सेंटर पर आया अपने दोस्त के साथ, तो हम तो ऐसे यहाँ बहने रहती हैं, क्या होता है, अंदर आए तो मतलब हमारा भाव कोई अच्छा नहीं था, लेकिन जब बहनों से हम मिले और बहनों से जो हमने सुना और जिस तरह से हमारे प्रति व्यवहार था, उससे हमारा मन परिवर्तन हो गया। और हमको ज्ञान सुनने की इच्छा हुई और फिर हमने कोर्स किया और हमारा पूरा जीवन ही बदल गया कि हम सोच कर क्या आए थे और सचमुच है। तो इसको कहते हैं कि हम हमसे मिलकर दूसरी आत्मा के भाव और वृत्ति भी परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे तो प्रमाण है लेकिन हमें उसको और बढ़ाना है। तो ये पर्सनैलिटी, जैसे हम दुनिया में कहते हैं अनेक प्रकार की पर्सनैलिटी है दुनिया में, पोजीशन की पर्सनैलिटी होती है, जिनकी पोस्ट पोजीशन ऊंची होती है उनका दुनिया में नाम होता है, सब उनको जानते हैं। पर्सनैलिटी उसको ही कहा जाता है जो प्रसिद्ध होते हैं, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होते हैं, या फिर धन के कारण जो दुनिया में सबसे अमीर हैं, हम देखते हैं उनकी भी लिस्ट आती है कि दुनिया के 10 बड़े अमीरों की सूची में किस किस का नाम है। हाँ, तो हम जानते हैं अंबानी है, टाटा है, बिरला है, और भी बिल गेट्स हैं, बफे, वॉरेन बफे हैं, और भी बहुत सारे हैं, है ना, उनके नाम आते, तो वो भी पर्सनालिटीज हैं। यहाँ तक कि दुनिया में जो है वो शारीरिक सुंदरता के आधार पर भी पर्सनालिटीज मानी जाती हैं, उनके ये कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर इंडिया, जो भी कहो, मिस इंडिया, इस तरह के होते हैं, और फिर वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है वो देवी देवताओं की है, और देवी देवताओं की पर्सनालिटी का, रॉयल्टी का पूजन होता है। केवल गायन नहीं, ये जो आत्माएं आत्मा है, बाबा कहता है इनका गायन जरूर होता है लेकिन पूजन नहीं होता है, पूजन योग्य नहीं, लेकिन देवताओं की प्यूरिटी की पर्सनालिटी की पूजा होती है और विधि पूर्वक पूजा होती है, जैसे हमने सुना अभी साजों और बाजों के साथ उनकी पूजा होती है। ऐसी पूजा किसी धर्म पिता की नहीं होती है, ऐसी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो हमारी पर्सनालिटी इस जीवन में प्रत्यक्ष होती है और फिर वही 21 जन्म तक चलती है। फिर प्यूरिटी की रॉयल्टी भी है, श्रेष्ठता बाबा कहता है इतनी है कि अनादि रूप में, आदि रूप में, पूज्य स्वरूप में, अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण नाम से भी कितना ऊंचा नाम है कि दुनिया में भी जो लौकिक ब्राह्मण है, भले वो कर्म से ब्राह्मण नहीं है, जन्म से ब्राह्मण है, नामधारी ब्राह्मण जिसको बाबा कहता है, वो भी अभी भी ब्राह्मण नाम से अपना शरीर निर्वाह चला रहे हैं, अभी भी उनको ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, अभी भी उनको ब्राह्मण नाम से सम्मान मिलता है, और वो हम सच्चे ब्राह्मण हैं, हमारी ही यादगार रूप में वो हैं कि ब्रह्मा की जो ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट ब्रह्मा की ज्ञान है, वो हम ब्राह्मण बच्चे हैं। तो उस रूप में ये श्रेष्ठता पूरे कल्प की है। फिर रॉयल्टी का संबंध रियलिटी से है, बाबा कहता है कि जितना हमारे अंदर सच्चाई सफाई है वो भगवान को प्रिय है, पवित्रता का एक अंश सच्चाई सफाई भी है। पवित्रता के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जैसे हम स्वच्छता को भी पवित्रता, दुनिया में स्वच्छता को लोग पवित्रता मानते हैं, कहते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो उसमें तन मन धन सभी तरह से संबंध, सब में स्वच्छता हो, यानी सच्चाई सफाई हो। तो वो सच्चाई सफाई में कई, जब हम संबंध व्यवहार में आते हैं तब जो हम अंदर हैं वही हम बाहर व्यवहार करें, ऐसे नहीं अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। कल विशेषता है, कलयुग की ये विशेषता है, कलयुग के लिए कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, मतलब आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि अगर वो आपको ये कह रहा है तो सचमुच वो सत्य ही कह रहा है, वो आपके सामने कुछ बोलेगा और आपके पीछे कुछ और है, आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है, आपके पीठ पीछे तुरंत आपकी बुराई करने लगे, ऐसा ऐसे हम देखते हैं और फिर सोचते हैं कि बिना झूठ बोले तो हमारा काम चलता ही नहीं है, क्या कहेंगे ब्राह्मण भी कई बार, क्योंकि अब है तो हम अभी कलयुग में ना, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण भी थोड़ा सा झूठ बोलते हैं लेकिन चतुराई से बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, युक्ति, कि युक्ति से चलना पड़ता है, झूठ का सहारा थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, तो लेना चाहिए, क्या कहेंगे? तो भले ही हाँ, एक एक जगह बाबा ने हमें छूट दी है कि अगर वो कल्याण के लिए है, जैसे भक्ति में भी कहते हैं, वो गाय का उदाहरण हम सुनते हैं ना, कि कसाई मारने आया और वो किसी से पूछा उसको कहाँ गई गाय, क्योंकि गाय भाग रही थी, तो जिसने देखा उसने कहा मुझे पता नहीं, हालांकि उसने देखा था, तो ये उसने गाय की जान बचाने के लिए कहा क्योंकि उसने देखा कि कसाई उसको मारेगा, तो उसने उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोला, तो ऐसा झूठ पाप नहीं है, ऐसे बोलते झूठ बोलना पाप है, लेकिन जिसमें कल्याण है, किसी का भला है, अगर वो झूठ का हम उपयोग करते हैं तो वो समय स्थान परिस्थिति के अनुसार उसका फल बदल जाता है, जैसे हम कहते हैं कर्म का फल समय स्थान परिस्थिति के अनुसार होता है। तो यहाँ अभी मानो किसी के घर वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते, आपको सेंटर पर आने से रोकते हैं और आप कोई युक्ति अपनाते हैं, बाजार जा रहे हैं और बोलेंगे कि हम वहां जा रहे हैं और चले जाते हैं सेंटर, तो कहने में तो आपने नहीं कहा कि मैं सेंटर जा रही हूँ, लेकिन तो उसको हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब मानो आपको मधुबन आना है और आपके पति जो हैं वो आपको छुट्टी नहीं देते हैं क्योंकि वो बंधन डालते हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते, तो माता जाती है मायके और बोल के गई मैं मायके जा रही हूँ, और क्योंकि ऐसे किस्से हमको सुनाते हैं लोग। एक बहन मुझे मिली थी थोड़े दिन पहले, तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है कि मेरे सास और पति जो हैं वो बिल्कुल एकदम विरोधी, कट्टर विरोधी हैं, और मेरे को बाबा से बहुत लगन है, तो मैं मधुबन में मैं नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने अपना मायके जाने की बात कही और आई मायके में एक दिन रही और मायके से फिर मैं यहाँ मधुबन आ गई, तो मेरे वो ससुराल वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। तो इसको हम नहीं झूठ की श्रेणी में लाएंगे क्योंकि ये आत्म उन्नति के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए हमने उसे यूज किया। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, जैसे मानो हमसे कोई गलती हो गई, अब अपनी गलती को छुपाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, उसको हम पवित्रता नहीं कहेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेरी गलती सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहम होता है हमारे अंदर, तो हमें लगता है अगर मेरी गलती सामने आ गई तो मेरा नाम कम हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, या लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में, तो फिर हम उसको छुपाते हैं। और उसको छुपाने के लिए जिसको बाबा कहते हैं ना, फिर एक झूठ के पीछे हजार झूठ बोलते हैं, तो फिर वो झूठ वास्तव में पाप है, वो हमें आवश्यकता नहीं है। फिर कई बार चतुराई से, क्योंकि हमको पता है कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो तो उनको तो क्या पता चलता है, अगर हमने इस तरह से बात को पेश किया, जैसे कहते हैं ना झूठ को सच बना देते हैं और सच को झूठ बना देते हैं, कई लोगों की चतुराई इतनी अच्छी होती है, बात को इस तरीके से पेश करेंगे कि बिल्कुल झूठी बात ही सच्ची लगेगी, तो हमने पेश कर लिया, अपने आप को बचा लिया, तो बाबा कहते हैं अभी तो बच गए आप, लेकिन भगवान के सामने छुपा सकते हैं? बाबा के सामने छुपेगा वो सच? नहीं छुपेगा ना। तो बाबा के दिल से फिर हम उतर जाते हैं, यानी बाबा के विजय माला में जो हमारा नाम होना चाहिए, जो अविनाशी प्राप्ति हमें होने वाली है, उस अविनाशी प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। इसीलिए अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, और अगर वो हमें कहना पड़ता है, बताना है, तो जरूर हमें सच ही बताना चाहिए। कई बार हमें लगता है सच की राह बहुत मुश्किल है, सच पर चलना इतना आसान नहीं है, तो फिर बाबा क्या कहते हैं, सच की नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती है क्या? आज तक यज्ञ में देखते ही है ना हम, यज्ञ सत्यता के आधार पर चल रहा है, क्योंकि शिव बाबा है ही सत्यम शिवम सुंदरम, वही हमें सत्य ज्ञान देकर के सतयुग की स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना यानी सत्य का युग, वो स्थापन करें। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, मैं क्या सुनाता हूँ आपको, क्या सुनाता हूँ, सत्य नारायण की कथा, और उसमें भी सच्ची सत्य नारायण की कथा। पहले भी हम सत्य नारायण की कथा सुनते थे लेकिन वो सच्ची नहीं थी, अभी हम सच्ची सत्य नारायण की कथा बाबा से सुनते हैं और वो कथा सुन सुन करके हम सचमुच नारायण बन जाते हैं। तो भगवान को सत्य पसंद है, इसीलिए सच्चे दिल पर साहब राजी कहा। और जब हम सच सुनाते हैं बाबा को, बाबा को भी हमें सच सुनाना है, और वो विधि रखी है बाबा ने, ऐसे नहीं कि वो तो अंतर्यामी है, वो जानी जाननहार है, बाबा तो जानता ही है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से क्या हो रहा है। अगर कोई भी श्रीमत के विपरीत हमसे कर्म हो गया, इसीलिए चार्ट देने के लिए बाबा बोलते हैं कि हमें बाबा को वो सच सुनाना है, और अगर हम सच सुना देते हैं तो फिर वो आधा माफ हो जाता है। और क्योंकि हम रियलाइज करते हैं तो बाबा हमें शक्ति देते हैं कि आगे के लिए फिर वो कर्म हमसे ना हो, यानी फिर जो भी श्रीमद् प्रमाण हमें करना है वो कर्म करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए। इसलिए वो विधि बाबा ने हमें रखी। और मानो बाबा से हमारा योग नहीं लग रहा है, मन इतना मुंझा हुआ है या भारी है, जो भी है, तो फिर निमित्त आत्माओं के लिए बाबा बोलते हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा थे, अब ब्रह्मा बाबा नहीं है तो उनकी उनके स्थान पर बाबा ने जो निमित्त आत्माएं रखी हैं, उन निमित्त आत्माओं को हमें सच सच सुना देना है, यानी अपना कुछ भी पाप छुपाना नहीं है। कई बार बाबा मुरली में नहीं कहते हैं, छुप कर आकर बैठ जाते हैं सभा के अंदर, और छुप कर आकर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। वो जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि इंद्र सभा में एक परी लेकर आई किसी को छुपा करके, तो वो क्या बन गया। तो इसीलिए जो ईश्वरीय जीवन में हमारे सच्चाई की रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी को भी हमें बनाए रखना है। पर कुछ भाई बहने कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है, हमारा तो काम ही ऐसा है कि बिना झूठ बोले होता ही नहीं, वकील है बिना झूठ बोले वकालत, ऐसे ही कहेंगे ना, और बिजनेस तो बिना झूठ बोले प्रॉफिट होता ही नहीं, तो फिर कैसे कमाएंगे। भाई है ना, बिजनेस करते होंगे काफी, तो क्या समझते हैं कि बिना झूठ बोले बिजनेस हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो बिजनेस करने वाले हैं, अनुभवी हैं, यहाँ बैठे हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। क्योंकि अगर हमें धन का लालच नहीं है, झूठ कौन बोलता है जिसे बहुत धन कमाए, जो आज की दुनिया में कि कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा कम धन कमा लें, जितना ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस बना लें, मकान बना लें, या जो भी आज की दुनिया में वो दौड़ है, हम उस दौड़ में शामिल नहीं है। हैं हम उस दौड़ में, हम तो उस दौड़ से न्यारे हैं, हमें तो विनाशी कमाई का महत्व मालूम है। हमें बाबा ने कहा है शरीर निर्वाह अर्थ जितना चाहिए उतना हमें सहज आवश्यकताएं हमारी पूरी करने के लिए बाबा बंधा हुआ है, और उतना हम आराम से कमा रहे हैं। बाबा के कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे। तो जब हमें सहज वो कमाई हो रही है तो हमें क्यों झूठ बोल करके अपना जो हमारी अविनाशी कमाई है उससे हम वंचित हो जाएं। फिर जैसे समझो कोई ऐसा धंधा है वकालत वगैरह का भी, तो मुझे याद है महात्मा गांधी की जो मैं आत्मकथा की बात कर रही थी उसमें मैंने पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था ना, तो उनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी आत्मकथा का नाम ही यही है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो जब वकालत करते थे तो उन्होंने ये संकल्प किया कि कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें उनको झूठ बोल करके अपने क्लाइंट को बचाना पड़े वो ऐसा मुकदमा लेंगे ही नहीं, जिसमें उनको डाउट है कि भाई इसकी ही गलती है और इसको ही सजा मिलनी चाहिए और उसको मुझे बचाना है, वो मुकदमा लेना ही नहीं। तो बस बात ही खत्म हो गई, फिर वो झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि हम ऐसे वो वकील भी ऐसे मुकदमे क्यों लेंगे, क्योंकि धन का लालच है और उसमें लोभ का, जैसे कहा कोई भी विकार का अंश वंश नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सबके अंश वंश है, तो ये लोभ के अंश में आ जाता है, तो ये भी हमें इनसे भी मुक्त होना है, सभी विकारों के अंश वंश से मुक्त होना है। तो जब हम पवित्रता की इतनी सूक्ष्मता से जो बाबा ने हमें समझाई है समझेंगे तो संपूर्ण पवित्रता हमारी अनुभव में आएगी। और उसके लिए हमें रोज चेकिंग चाहिए, महीन पुरुषार्थ है। मोटा पुरुषार्थ तो हमारा हो गया, ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं, मोटे रूप में बाबा की श्रीमत को हम सब अपना कर चल रहे हैं, लेकिन वो जो रॉयल रूप है उसके माया के, अपवित्रता के जो सूक्ष्म रूप है, अब जैसे व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ संकल्पों पर कहाँ कंट्रोल होता है, कोई भी बात आ जाएगी बस एक के बाद एक क्यू लग जाती है पूरी, और पूरी तरह से मन उसके वश में अशांत हो गया। तो ये हमें चेकिंग करके अपने अंदर चेंज लाना है, और अंतिम समय से पहले हमें वो संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करना है। ओम शांति।
जीवन में सुख ही सुख मिला।